वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव धोक्ष्ये क्षीरमयान् कामान् अनुरूपं च दोहनम्। दुख संख्या 10। दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावना अन्नम् ईप्सितम् ऊजस्वद् भगवान् वांछते यदि द्वारा अनुवाद। हे परम वीर, जीवात्माओं के रक्षक, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हो और यदि आप मुझे दुह कर उनका पोषण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने के लिए दुहनी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही दुहने वालों का भी प्रबंध करना होगा, क्योंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सला होंगी। अतः मुझसे दुग्ध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गाय दुहने के लिए ये उत्तम आदेश है। गाय के लिए सर्वप्रथम बछड़ा चाहिए, जिसके स्नेह से गाय अधिक दूध दे सकेगी। इसके साथ ही पटु दुहने वाला तथा दूध रखने के लिए पात्र दोहनी भी चाहिए। जिस प्रकार गाय बछड़े के प्रति वत्सल हुए बिना अधिक दूध नहीं देती, उसी प्रकार पृथ्वी भी कृष्ण भक्तों के प्रति वत्सल हुए बिना प्रचुर अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती। यद्यपि गो रूप में पृथ्वी को अलंकारिक शैली से व्यक्त किया गया है, किंतु इसका भावार्थ अत्यंत प्रत्यक्ष है। जिस प्रकार बछड़ा गाय से दूध प्राप्त करता है, उसी प्रकार समस्त जीवात्माएं, जिनमें पशु पक्षी मधुमक्खी सर्प तथा जलचर सम्मिलित हैं, पृथ्वी से तभी अपना अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं जब वे असत या अधृत व्रत न हो, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। जब मानव समाज असत अथवा कृष्ण चेतना शून्य हो जाता है तो सारे संसार को दुख उठाना पड़ता है। यदि मनुष्य सदाचरण करें तो पशुओं को भी पर्याप्त भोजन मिलेगा और वे सुखी रहेंगे। ईश्वर विहीन मानव पशुओं को सुरक्षा तथा उनके भोजन के प्रति अपने कर्तव्य को न समझकर अन्न के अभाव की पूर्ति के लिए उनका वध करता है। इस प्रकार कोई भी सुखी नहीं रहता और विश्व की वर्तमान दशा का यही कारण है। हरे कृष्ण। तो पृथ्वी माता बोल रही हैं पृथु महाराज से कि ठीक है, मैं आपकी इच्छा को पूरी कर लूंगी, लेकिन मैंने अभी गो रूप धारण किया हुआ है, इसलिए अगर मुझसे आप दूध प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बछड़ा आपको लाना चाहिए, क्योंकि बछड़े को देखकर जब मेरे हृदय में वात्सल्य भावना जागृत होगी तब स्वाभाविक तौर से मेरे थनों से दूध बहने लगेगा। और साथ साथ में दुहने वाला व्यक्ति भी कोई चाहिए, और जो दूध निकलेगा उसके लिए एक पात्र चाहिए, दोहनी। तो इस तरह से अगर आप व्यवस्था करोगे तो फिर आप सारे प्रजा के कष्ट को मिटा पाओगे। इस श्लोक में यह महत्वपूर्ण बात आती है कि किस तरह से गाय संतुष्ट होकर प्रेम भावना से दूध देना पसंद करती है। यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम भी जब संतुष्ट होते हैं तो अच्छी तरह से काम करते हैं, अच्छी तरह से दान देते हैं, अच्छी तरह से हमारी साधना करते हैं, अच्छी तरह से सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हमारे हृदय में कोई संकट होता है तो फिर किसी भी चीज में हमें रुचि नहीं लगती। तो गाय को दुहने का भी ये रहस्य है। अगर गाय से हम अच्छी मात्रा में दूध लेना चाहते हैं तो गाय को प्रसन्न रखना चाहिए। हाँ, केवल हमें दूध चाहिए इसलिए गाय को प्रसन्न रखेंगे, ऐसा नहीं है। गाय को वैसे भी प्रसन्न रखना चाहिए, चाहे वो दूध दे या न दे, क्योंकि गाय तो थोड़े सालों के लिए ही दूध दे सकती है। वैसे देखा जाए 12-13-15 साल से ज्यादा नहीं जीते हैं, और गाय गाभिन होने के बाद में ही दुहने लगती है, अर्थात 4-5 साल के आयु से लेकर 10 साल की आयु तक 6 साल गाय दूध देती है, कोई गाय 8 साल 10 साल और कोई कम भी। लेकिन इससे पहले और इसके बाद में जब गाय दूध देने के लिए योग्य नहीं है, काबिल नहीं है, फिर भी हमें गाय का बहुत प्रेम से देखभाल करना चाहिए, क्योंकि गाय भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। और प्रिय होने के नाते जब हम गाय की रक्षा करते हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, नमो ब्राह्मण्य देवाय। वो ब्राह्मणों के पूजनीय देव हैं, गायों से प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, इसलिए गाय को प्रसन्न रखने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ही सरल तरीका है। भगवान को प्रसन्न करना कोई कठिन बात नहीं है। पिछले कई दिनों में हम चर्चा करते आ रहे हैं कि किस तरह से हमारा जीवन यज्ञ होना चाहिए, हर एक क्षण यज्ञ होना चाहिए। और यज्ञ का मतलब है भगवान को प्रसन्न करना, यज्ञ अर्थात कर्मणः, भगवान श्री विष्णु या कृष्ण के लिए कार्य करना, उनके संतुष्टि के लिए कार्य करना। तो किस तरह से हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, कई तरीके हैं। कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण और आसान तरीका है उनके पवित्र नामों का जाप और कीर्तन करना। तो ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। उनके अर्चा विग्रह की सेवा करना, उनके भक्तों की सेवा करना, ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे कि भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। ये राज है। भगवान ने अपनी इच्छा या अपने मत को व्यक्त किया है शास्त्रों के द्वारा, और शास्त्र में भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किस तरह से उनको प्रसन्न किया जा सकता है। तो गाय की सेवा करना, गाय को प्रसन्न रखना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो गाय चाहे दूध दे या न दे, हमें गाय की सेवा अच्छी तरह से करनी चाहिए। तो लेकिन गाय जब दूध देती है तो दूध की संख्या, दूध की मात्रा बढ़ाया जा सकता है केवल गाय को ज्यादा खुश रखने से। आजकल जो डेयरी फार्म्स हैं, जिन्होंने दूध उत्पादन का एक व्यवसाय बनाया है, वो भी गाय को प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने ढंग से। तो ये ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि वो केवल व्यवसाय दृष्टि से ये निर्णय लेते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त जो होते हैं वो व्यवसाय की दृष्टि से गाय को नहीं देखते। हालांकि गाय का आर्थिक मूल्य बहुत अधिक है साधारण किसान के लिए, लेकिन जो वैदिक संस्कृति का पालन करते हैं, जो धार्मिक होते हैं, वो जानते हैं कि आर्थिक मूल तो है ही गाय की, इसलिए तो भगवान ने दिया है हमें। आर्थिक सहायता होती है और धार्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ भी होता है। तो जब हम गाय को प्रसन्न रखते हैं तो गाय प्रचुर मात्रा में दूध देती है, यह वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध करके दिखाया है। इसलिए शास्त्र में बताया जाता है कि गाय को ऐसे गौशाला में रखना चाहिए जहां वो संतुष्ट रहे, जहां हवा पानी बिल्कुल अनुकूल हो, जहां पे ज्यादा ठंडी ना हो, ज्यादा गर्मी ना हो। और ये भी बताया जाता है शास्त्र में, पुराणों में बताया हुआ है कि मधुर संगीत बजना चाहिए। जिस तरह से हम भी मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, मधुर संगीत सुनने के बाद में हम खुश हो जाते हैं, जैसे भक्त लोग कीर्तन सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं, उसी तरह से गाय भी जब मधुर संगीत सुनती है, भगवान का संकीर्तन हो, शास्त्रीय संगीत हो, तो गाय को बहुत अच्छा लगता है और ऐसे प्रसन्न चित्त से वो दूध ज्यादा देती है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि खास करके दुहने के समय शास्त्रीय संगीत या ऐसे भक्ति संगीत गाय को सुनाना चाहिए। और ये धीरे धीरे से डेयरी फार्म वगैरह भी अभी इसका पालन करते हैं। हाँ, वो अपने ढंग से अपना संगीत सुनाते हैं, सोचते हैं कि गाय इससे प्रसन्न होगी, लेकिन ऐसे संसारी संगीत से गाय प्रसन्न नहीं होती है। ढिकढाक 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 जो होता है उससे गाय प्रसन्न नहीं होती। गाय को सत्वगुणी संगीत चाहिए जिससे कि उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि गाय सत्वगुणी पशु है और उसे सत्वगुणी आहार चाहिए, सत्वगुणी संगीत चाहिए, सत्वगुणी वातावरण चाहिए, सत्वगुणी व्यक्ति चाहिए जो उसका देखभाल कर सकता है। तो इस तरह से मधुर वातावरण रखना आवश्यक है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि उसके लिए प्राकृतिक एक वातावरण तैयार करना चाहिए। एक सज्जन है सूरत में जो कि गो प्रेमी है, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि गायों को सुखी रखने के लिए, खुश रखने के लिए मैं एक विशाल गौशाला बनाऊंगा और उसको एयर कंडीशन कर दूंगा, और उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए वो तैयार है, और इसमें पांजरा पोल बना रहे। पांजरा पोल मतलब वो गौशाला जिसमें अंधे गूंगे लंगड़े गाय ऐसे जो भी बहुत, जहां से जो कि कत्ल खाने में जाते जाते बचाए हुए हैं, जिनके कोई पैर टूटा हुआ है, जो बीमार हैं, जो मरने की अवस्था में है प्राय, या जिसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, ऐसे गायों के लिए जो गौशाला होती है उसको भारतवर्ष में पांजरा पोल कहते हैं। खास करके गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसे पांजरा पोल बहुत है। तो इन्होंने सोचा कि सारे जो गाय हैं जिनको कोई बचा नहीं रहा है, मैं उनके लिए एक ऐसा एयर कंडीशन गौशाला बनाऊंगा बड़ा, और बहुत पैसे खर्च करूंगा, लाखों रुपए हर महीने खर्च होंगे इसके लिए। केवल एयर कंडीशनिंग का बिल जो है वो तो कितना हो जाएगा, लाखों में वही आ जाएगा केवल। लेकिन वास्तव में देखा जाए भावना अच्छी है, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। एयर कंडीशन कमरे में अगर हमको और आपको रहना पड़े दिन भर, हमें भी अच्छा नहीं लगता। थोड़े समय के लिए ठीक है, बाहर गर्मी है, थोड़ा बहुत एयर कंडीशन की का तापमान से थोड़ा बहुत कुछ फायदा मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में अच्छा नहीं लगेगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। जो आनंद बाहर के खुले वातावरण में जो फ्रेश हवा से आता है, वो वातानुकूलित वातानुकूलित वातावरण से नहीं आता, एयर कंडीशन कमरे में नहीं आता उतना, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं, नैसर्गिक नहीं है। भगवान ने एयर कंडीशनर को पेड़ों पे नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक चीज नहीं है। तो प्राकृतिक चीजों से ही वास्तव में हमें आनंद आ सकता है। तो इस तरह से गाय को भी प्राकृतिक वातावरण में रखना चाहिए, लेकिन फिर भी ज्यादा ठंडी ज्यादा गर्मी से बचा के रखना चाहिए, जैसे मच्छरों से वगैरह बचा कर रखना चाहिए। हर ये भी शास्त्र में बताया जाता है कि गौशाला में धूप जलानी चाहिए हर शाम को सुबह को, उस धूप से सुगंध भी आता है, जैसे हमें अगरबत्ती लगाने से कैसे मन में शांत लगता है, शांति लगती है, उसी तरह से गौशाला में भी हमें जाकर धूप लगाना चाहिए, सुबह शाम अगरबत्ती जलाए रखना चाहिए, और हमेशा 24 घंटे कोई ना कोई दीप जला के रखना चाहिए वहां। रात को एकदम अंधकार हो, गाय को कुछ इधर उधर करना है तो दीप से थोड़ा कुछ दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से गाय को कैसे प्रसन्न रखा जाए, ये भी एक विज्ञान है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रेम। जब गाय को हम प्रेम से इसका देखभाल करते हैं, जब प्रेम देते हैं गाय को, तो गाय प्रसन्न होती है, क्योंकि गाय भी पशु है, आखिर जीव आत्मा है। हर एक जीव को चाहिए प्रेम, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है। और जब जीव कृष्ण को भूल जाता है तो इस संसार में प्रेम ढूंढता है संसारी लोगों के प्रति के माध्यम से। तो खैर, चाहे कोई गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, सभी को प्रेम चाहिए। प्रेम जब मिलता है किसी को प्रसन्न रहता है। हर एक कठिन से कठिन परिस्थिति में कोई व्यक्ति को प्रेम मिले तो वो कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वातानुकूलित घर में रहते हुए भी, वातानुकूलित ऑफिस में, गाड़ी में चलते हुए भी अगर किसी के हृदय में, किसी के जीवन में प्रेम नहीं है तो उसका जीवन खोखला हो जाता है, सूखा रह जाता है, उसको आनंद नहीं आता। तो वही बात गाय के लिए भी है। केवल गाय को एयर कंडीशन कमरे में, गौशाले में रखने से ये काफी नहीं है, उसको व्यक्तियों के माध्यम से प्रेम मिलना चाहिए। हम कितने ही गौशाला में घूमे पिछले कई महीनों में तो यही देखा कि जो मालिक होते हैं उनकी हृदय में गौ सेवा करने की भावना होती है। अलग अलग गौशालों में गए हम, वैसे कई डेयरी फार्म वहां मालिक को भी गौ के प्रति प्रेम नहीं है, वो तो दूसरी बात है, तो वहां नौकर को प्रेम कैसे होगा? जब मालिक को नहीं है तो नौकर को कहां से होगा? लेकिन जहां पर मालिक के हृदय में भी प्रेम है और जो गौ रक्षा करना चाहते हैं, गौ सेवा करना चाहते हैं, वो भी खुद सब चीज नहीं कर सकते, इसलिए वो भी सेवक रखते हैं। और ये नौकर जो है केवल आमदनी के लिए काम करते हैं, तनख्वाह के लिए, और इसलिए इनके हृदय में वास्तव में गाय के प्रति प्रेम नहीं है, एक नौकरी के रूप में कर लेते हैं। इसलिए जब प्रेम नहीं इतना मिलता तो गाय भी जल्दी से बीमार हो जाती है, गाय भी दूध उतना ज्यादा नहीं देती है, कम मात्रा में देती है। तो इस तरह से जब सेवक, गौ का सेवक प्रेम से बर्ताव करेगा गाय के प्रति, तो गाय प्रचुर मात्रा में दूध देगी, गाय खुश रहेगी, बीमारी भी कम हो जाएगी। मनुष्य जीवन में भी हम देखते हैं जब मानसिक बीमारी किसी के हो जाती है या मानसिक तनाव हो जाता है तो ज्यादा जल्दी बीमार पड़ जाता है। और आजकल के डॉक्टर भी बताते हैं कि आजकल के समय में, तनावग्रस्त समय में, ज्यादा से ज्यादा बीमारियां जो होती हैं वो मन से उत्पन्न होती हैं। जब मन में तनाव इत्यादि हो जाता है तो शरीर में भी इसका परिवर्तित रूप निकल आता है और नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, केवल मानसिक तनाव से उत्पन्न होती है ये सब। तो जब कोई व्यक्ति मन से खुला रहता है, फ्रेश रहता है, सुखी रहता है तो उसका स्वास्थ्य भी खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो इस तरह से वातावरण का बहुत फर्क पड़ता है। हम देखते हैं हमारे ब्रह्मचारियों में से भी एक, बाहर जब रहते थे तो हमेशा बीमार रहते थे, है ना उमेश? हमेशा बीमार रहते, कितने सालों से इतनी तकलीफ हो गई, यहां तक कि हॉस्पिटल में ज्यादा समय बिताते थे, घर में कम, कितने साल ऐसे बीत गए। लेकिन एक बार ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचारी आश्रम में आए तो अभी 11 किलो वजन बढ़ गया, अभी प्रसाद कीर्तन जब इसमें रुचि आ रही है, सारा जीवन ही बदल गया। क्यों? क्योंकि वातावरण बदल गया, कृष्णमय वातावरण बन गया, भक्ति का वातावरण बन गया, तो मन बिल्कुल शांत हो गया। तो मन का शांत, जब शांत हो गया तो शरीर खुद ब खुद सब ठीक हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गाय के लिए भी अगर ऐसे वातावरण बनाया जाए जहां सेवक प्रेम से सेवा करें तो गाय खुश होती है। गाय को खुश करने के लिए ज्यादा नहीं लगता, जैसे कि भक्त को खुश करने के लिए ज्यादा नहीं लगता। देखिए हमारे ब्रह्मचारी भी यहां पर कैसे अवस्था में रहते हैं, कुछ ठीक नहीं, सब टूटा फूटा सब चल रहा है, लेकिन खुश है, कोई चीज की आवश्यकता नहीं, केवल उनको कीर्तन चाहिए, प्रसाद चाहिए, दो प्रेम के शब्द चाहिए, बस अपना जीवन कृष्ण के लिए देने के लिए तैयार रहते हैं। तो प्रेम वास्तव में मन आदमी को सुखी रहने के लिए ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। ये थोड़ी चीजें, सिंपल सरल जीवन हो, प्रेम हो जीवन में, कृष्ण नाम हो, कृष्ण प्रसाद हो, बस। तो गाय के लिए भी वही चीज है, गाय से मीठी बातें करना, गाय को थोड़ा बहुत पीठ पे हाथ लगाना, और गले में, गल कंबल में थोड़ा बहुत खुजली करना, कानों के पीछे और कानों के अंदर खुजली करना, ऐसा करते रहेंगे, चारा, हरा चारा देते रहेंगे, फ्रेश पानी देते रहेंगे और फ्रेश हवा, खुली हवा में जाने के लिए, उसे चरने के लिए देंगे, गाय खुश रहेगी। आप ये अनुभव कर लीजिए, गाय को जाके पीठ पे हाथ चलाइए और गल कंबल में खुजली कीजिए, कान के भीतर खुजली कीजिए, देखिए गाय तो आपको पीछा छोड़ेगी नहीं, गला आपके, आपको आलिंगन करने के लिए आ जाएगी सामने। केवल इतना करने से गाय खुश रह जाते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया हुआ है कि जो व्यक्ति गाय के पीठ के ऊपर हाथ फेरता है और गाय को खुजली करता है जहां उसे अच्छा लगता है, तो ये भी भक्ति का एक अंग है। बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं उसे केवल गाय को ऐसे पीठ के ऊपर हाथ फेरने से। तो इन सरल सरल चीजों से गाय खुश रहती है। लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े डेयरी बनाते हैं, और ऐसे कमर्शियल व्यवसाय की डेयरी भी है आंध्र प्रदेश ने, हमने सुना बहुत हजारों की संख्या में गाय हैं, संकरित गाय हैं, और वहां एयर कंडीशन सारा गौशाला है। लेकिन गाय की दृष्टि से, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो एयर कंडीशन की बात क्या, उसे कतल खाना, सीधा एयर कंडीशन से कतल खाना, कोई बीच का भी स्थान नहीं। यह है परिस्थिति। तो सरल सा भी कोई गौशाला बनाया जाए, लेकिन अच्छा चारा मिले, हरा चारा मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छा प्रेम मिले, खुली हवा मिले, बस गाय संतुष्ट है। और ऐसे अवस्था में गाय दूध देगी, सब कुछ करेगी, और जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए सारी कामनाएं पूरे कर देंगी गौ माता। गौ माता हर चीज में समर्थ है, पूरी तरह से समर्थ है हमारी सारी कामनाओं को पूरी करने के लिए गौ माता, क्योंकि कृष्ण के प्रिय है। जिस तरह से वैष्णव भी सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए समर्थ होते हैं, इसलिए हम जब किसी दूसरे वैष्णव को मिलते हैं तो हम प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, वांछा कल्प तरुभ्यश्च। इसका क्या मतलब है, वांछा कल्प, वांछा मतलब इच्छा, कल्प मतलब कल्पतरु मतलब कल्प वृक्ष, जो कि सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। तो वैष्णव क्या होते हैं, भगवान के भक्त, जो वैष्णव जो होते हैं वो कृष्ण से प्रिय, कृष्ण के लिए प्रिय होते हैं, और वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वो कल्प वृक्ष के समान है। तो गाय भी कृष्ण को प्रिय है, इसलिए वो भी हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती है। केवल गाय को खुश रखेंगे, वैष्णवों को खुश रखेंगे, तो कृष्ण खुश हो जाएंगे और हम खुश हो जाएंगे, फिर हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी की अनुभूति नहीं होगी। कितनी सरल सी बात है, देखिए। तो इस तरह से गाय यहां पृथ्वी माता बता रही है कि आप मुझे प्रसन्न रखिए और फिर दुहिए। लेकिन और एक बात है गाय को प्रसन्न रखने के लिए, और वो है कि दूध देते समय उसका बछड़ा सामने होना चाहिए। और यह भी स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन में या किसी भी योनि में हम देखते हैं कि वात्सल्य प्रेम जो माता का होता है बच्चे के प्रति, वो बहुत ज्यादा होता है, किसी और से ज्यादा होता है, पिता से ज्यादा होता है, भाई बहन से ज्यादा, और किसी से भी ज्यादा। तो मां का प्रेम बच्चे के प्रति सबसे ज्यादा रहता है। तो जब गाय के लिए गाय का दोहन करना होता है, तो आजकल लोग बड़े बड़े डेयरी फार्म्स में क्या करते हैं कि वत्स को या बछड़े को दूर कर लेते हैं और अलग से बछड़े को बाल्टी से दूध पिलाते हैं और गाय का दोहन करना शुरू करते हैं। तो ये इससे गाय प्रसन्न नहीं होती है। कई कई जगह ऐसे भी किया जाता है कि बछड़े की पुतली बनाई जाती है और पुतली सामने रखी जाती है, जिसको देखकर गाय शायद सोचे कि ये बछड़ा है मेरा, और वो दूध देने लगती है। लेकिन ये सब ठीक नहीं, ये सब धोखेबाजी है। वास्तव में गाय के बछड़े को पहले दूध पिलाना चाहिए, अच्छी तरह से दूध पिलाकर फिर हम अच्छे ढंग से दूध उसका दोहन कर सकते हैं। तब गाय भी प्रसन्न होगी और गाय का दूध जो निकलेगा उसके भी गुण ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। जब बहुत ही क्रोधित अवस्था में या दुखी अवस्था में या निराश उदास अवस्था में गाय दूध देती है, तो उसके दूध में भी वही गुण आ जाता है। जिस तरह से हम अगर क्रोधित हैं, उदास है, और हम भोजन पका रहे हैं या सब्जी काट रहे हैं, तो फिर जो खाने वाले हैं वो भी निराश हो जाएंगे, वो भी उदास हो जाएंगे। इसलिए जब सब्जी काटते हैं या प्रसाद बनाते हैं तो हमें भी हसमुख रहना चाहिए, बिल्कुल प्रसन्न चित्त से रहना चाहिए। तो अगर हम सब्जी काटते काटते सो जाएंगे तो खाने वाले भी सब्जी खाकर प्रसाद खाकर सो जाएंगे। तो इस तरह से जैसा अन्न वैसा मन, जैसे परिस्थिति होती है मन की, वैसे अन्न में उसका प्रभाव पड़ता है। तो गौ माता को खुश रहेगी तो दूध में जो सत्व रहेगा, जो गुण रहेंगे, वो भी बढ़ जाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, शायद हमारे वैज्ञानिक इसको जाने न जाने, लेकिन हमारे शास्त्र तो ये बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो इस तरह से गाय को खुश रखने से अगर बछड़ा सामने हो तो गाय अच्छी तरह से दूध देती है। तो यहां पृथ्वी माता कह रही है पृथु महाराज से कि ठीक है, आप मैंने गाय रूप धारण किया है और प्रचुर मात्रा में मेरे से आप दूध लेना चाहते हैं ताकि आपकी प्रजा संतुष्ट हो, तो ठीक है, सबसे पहले गाय का बछड़ा लाइए, बछड़ा लाइए ताकि उसे देखकर स्वाभाविक तौर से मेरे थन दूध से भर जाएंगे और दूध निकल आएगा, और साथ साथ में दोहने वाला भी चाहिए और एक पात्र भी चाहिए दोहनी, ये सब चीजें हो तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उसी तरह से गीता महात्म्य में बताया गया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये सारे उपनिषद इत्यादि जो हैं ये गाय के समान है, और दुग्धा अर्थात दोहने वाला वो कृष्ण है, दुग्धा गोपाल नंदन, और वत्स कौन है, पार्थो वत्स, पार्थ मतलब प्रथा पुत्र अर्जुन, अर्जुन वत्स है बछड़ा है, सुधीर भोक्ता, और ये दूध को उपभोग करने वाले, दूध को पीने वाले कौन है, सुधीर, सुधीर मतलब सुधीर, जो धीर पुरुष है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो जिनका हृदय निर्मल है और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इनको सुधीर कहते हैं। तो इनको इस दूध का भोग करना है या दूध का पान करना है। दुग्धम गीतामृतम महत, तो गीता के गीता के भाषा को या गीता के भाष्य को अमृत तुल्य समझा गया है, दूध, इस अमृत तुल्य दूध का पान करने से सुधीर जो है शांत हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें भी भगवत गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि इन गो रूपी ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। ऐसे श्रवण करने से हम इनके अमृत का दुग्ध का पान कर सकते हैं, और जब अमृत का पान करेंगे तो वास्तव में मृत्यु के परे हम हो सकते हैं, क्योंकि अमृत का शब्द मतलब ही तो यह है, अमृत, जो मृत्यु से परे है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत और भगवत गीता रूपी गाय के दूध का पान करेंगे तो हम जल्दी से अपने जीवन को सफल बनाकर भगवान के धाम में लौटकर जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
वंदेहं श्री गुरु श्री गुता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं चाप्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णा चैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपदां साधना ललिता श्री सावधानतां श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, कृष्णा कृष्णा।